और छठा श्लोक हिरण्मयः स पुरुषा सहस्र परिवत्सरान् आंड कोश वासाप्सु सर्वसत्वोप ब्रह्मितः। आवाज कम आ रही है अब? ठीक है हाँ। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे। तात्पर्य, जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो सारा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोकों, बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 देवी वर्षों की अवधि होती है। महत्तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है और सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं, अतः संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिक। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जैसा आप सब जानते हैं कि ये विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद चल रहा है। सो विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे मैत्रेय ऋषि से। सृष्टि की रचना के बारे में भी उनका एक प्रश्न था जो तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक था। तो उन्होंने पूछा था विदुर जी ने कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे होती है, कैसे बनता है ब्रह्मांड। तो मैत्रेय जी ने उसका उत्तर देना शुरू किया था और ये प्रसंग जो है इस छठे अध्याय में भी वही प्रसंग आगे बढ़ रहा है। सो बात ये हुई थी कि भगवान की इच्छा से महत्तत्व प्रकट हुआ और उससे 5 जो स्थूल तत्व हैं वो प्रकट हुए और रजोगुण तमोगुण के साथ झूठे अहंकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इंद्रियां प्रकट हुई, देवी देवता प्रकट हुए। और जब देवी देवता प्रकट हुए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम। उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं था उनको। तो देवी देवताओं ने क्या किया कि अपने कर्तव्य को जानने के लिए भगवान की शरण ली और भगवान से प्रार्थनाएं की कि हे भगवान, हमें आप बताएं कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो जब भगवान ने देखा कि देवी देवता निष्क्रिय हैं, तो भगवान ने उनको ज्ञान देकर, भगवान ने अपनी इच्छा योग माया की शक्ति से उनकी निष्क्रियता को हटाया। तो उसके बारे में बात हो रही है कि भगवान अपने काल शक्ति को भगवान ने सक्रिय किया और काल शक्ति के द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचना आरंभ की। भौतिक जगत के जितने भी तत्व हैं, वो सारे तत्व जो हैं वो चलायमान हो गए, सक्रिय हो गए, काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब भगवान, सो लोग बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, नहीं, कई बार तो झगड़ा हो जाता है इस बात पे, लेकिन शास्त्रों में और सातवा तंत्र में विशेष रूप से वर्णन है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण से जो प्रथम अवतार हैं बलदेव प्रकट होते हैं, और बलदेव जी से चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, और संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं, नारायण से दोबारा जो है चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, और उसमें उन चतुर्व्यूह से संकर्षण से पुरुष अवतारों का प्राकट्य होता है, जिसमें सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, जो कारणोदक जल में शयन करते हैं और उनके श्वास छोड़ने और श्वास लेने के बीच में सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और संहार हो जाता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, यस्य एक निश्वसित कालमथवलंब्य जीवन्ति लोम विलिजा जगदंदनाथा विष्णुर्महान सह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि जिनके एक श्वास छोड़ने और एक श्वास लेने में बड़े बड़े लोकपाल ब्रह्मा शिव इत्यादि देवी देवताओं का कार्य काल समाप्त हो जाता है, ऐसे महाविष्णु, ऐसे कारणोदक्षाय विष्णु भगवान कृष्ण की एक अंश के अंश के अंश हैं। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अंश नहीं है, बल्कि विष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान कृष्ण अंशी हैं और विष्णु जो हैं वो उनके अंश के अंश के अंश हैं। और जब कारणोदक्षाय विष्णु से सारे ब्रह्मांड जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो हरेक ब्रह्मांड है वो एक नारियल की तरह होता है। प्रभुपाद उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक नारियल की तरह है। नारियल के बाहर क्या है? नारियल के बाहर प्रकाश है, लेकिन नारियल के अंदर क्या है? नारियल के अंदर अंधेरा है। हाँ, और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो पूरे अंधकार से व्याप्त होता है, कुछ भी ना, तो जैसे कोई नया मकान खरीदो तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सब सामान लाके लगाना पड़ता है। उसी प्रकार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल एकदम खाली होता है वो ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं वो वहाँ पर जब देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड खाली है, तो गर्भोदक्षाय विष्णु वहाँ पर अपने शरीर से पसीना बहाते हैं और उस पसीने से आधा ब्रह्मांड जो है भर देते हैं पानी से, और उस जल को बोलते हैं गर्भोदक। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं उस जल में विश्राम करते हैं, और जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो 1000 दिव्य वर्षों तक विश्राम करते हैं वहाँ पर, और उस दौरान जितने भी जीव हैं वो सब सुप्तावस्था में भगवान के साथ निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि अगर जीव प्रकट नहीं है, जीवों का अभी अगर जन्म नहीं हुआ, वो निष्क्रिय अवस्था में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके व्यक्तित्व का विनाश हो गया है या वो भगवान में लीन हो गए हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक तोता अगर वृक्ष में, एक हरे पीपल के वृक्ष में प्रवेश कर जाए, तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि तोता और वृक्ष आपस में मिल गए हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो तोते का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व, जो अस्तित्व है, वो बरकरार रहता है, बना रहता है, वो अस्तित्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जीव निष्क्रिय अवस्था में भगवान में विद्यमान रहते हैं, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व का विनाश हो गया। भगवद गीता में भगवान इसके बारे में सूचना देते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब तुम मौजूद नहीं थे या मैं मौजूद नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम, मैं, ये सभी राजा, ये सब सैनिक, ये सब मौजूद नहीं रहेंगे। सो जिस प्रकार भगवान शाश्वत हैं, उसी प्रकार जीव आत्मा के रूप में शाश्वत है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। आत्मा निष्क्रिय अवश्य रह सकती है, चाहे लाखों वर्ष तक भी निष्क्रिय रहे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्मा का विनाश हो गया है। आत्मा जो है वो भगवान में विलीन हो गई है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। जो निर्विशेषवादी भगवान के शरीर में विलीन होने की बात करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। और भागवतम से हमें पता चलता है कि क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ली है, तो उस कारण से वो दोबारा से भौतिक धरातल पर गिर जाते हैं, उनको वापस इस भौतिक धरातल पर आना पड़ता है। सो यहाँ पर बात हो रही है कि भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु 1000 दिव्य वर्षों तक विश्राम कर रहे हैं और जीव उनके साथ। तो 1000 दिव्य वर्ष कितने हुए? हाँ, दिव्य वर्षों में एक दिन जो है एक वर्ष के बराबर होता है। भौतिक जो हमारा एक वर्ष है वो 12 घंटे के बराबर है, इसी प्रकार 12 घंटे जो रात्रि के हैं वो भी एक वर्ष के समान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय तक जीव निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। यहाँ पर जो अद्भुत बात है जानने योग्य वो ये है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की योग शक्ति से, उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो हम भौतिक जगत में अगर देखें तो सोते हुए कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, कोई भी जीव कार्य नहीं कर सकता सोते हुए, लेकिन भगवान इतने अचिंत्य हैं, भगवान योगेश्वर हैं, भगवान किसी भी परिस्थिति से बाध्य नहीं होते। और भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सुध-बुध खो बैठे हैं हमारी तरह। भगवान हमेशा चेतन अवस्था में रहते हैं, हमेशा पूरी तरह जागरूक रहते हैं भगवान। और जब भगवान विश्राम भी कर रहे हैं तो भी भगवान अपनी योग शक्ति के माध्यम से निर्बाध रूप से सृष्टि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जितना भी भगवान संबंधित ज्ञान है वो अधोक्षज ज्ञान है, अचिंत्य ज्ञान है। ज्ञान को प्राप्त करने के दो साधन हैं, अवरोह और आरोह। आरोह का मतलब है कि हम स्वयं किसी ज्ञान को प्राप्त करें, कि जिस प्रकार हम भौतिक जगत में अलग अलग जगह से ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर सीख लेते हैं चीज़ों को, इसको आरोह ज्ञान कहा जाता है। जो सांख्यवादी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो लोग अपनी शक्ति से इस भौतिक जगत को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आरोह मार्ग है। इस आरोह मार्ग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है उसकी आयु सीमित है। पूरा ज्ञान प्राप्त करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जितना भी उसने ज्ञान प्राप्त किया सब नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ ही सारा ज्ञान उसका वो भूल जाता है। अगले जन्म में दोबारा से उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरे ज्ञान की पद्धति अवरोह ज्ञान की पद्धति है, जिसमें हम एक उच्च अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और भगवान ने इस तरह ज्ञान प्राप्त करने की सुझाव दिया है। भगवान ने ये कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने का ये श्रेष्ठ तरीका है। और भगवान ने कहा है कि आप इसी तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कीजिए। और भगवान ने समय समय पर विभिन्न भक्तों के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान भौतिक संसार में मनुष्यों के लिए प्रदान किया। भगवान ने यह ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन समय के प्रभाव से नष्ट हो गया। तो भगवान ने यह दिव्य ज्ञान वापस अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दिया। इसी प्रकार हम जानते हैं भागवतम से कि भगवान ने यह दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में भी प्रकाशित किया था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने यह दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को भी दिया। भगवान ने दिव्य ज्ञान शिव जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, और इन सभी से चार कुमारों को दिया, और इन सभी महान भक्तों के माध्यम से चार जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं उनकी स्थापना हुई। सो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है कि हम किसी उच्च अधिकारी की शरण लें और उनसे भगवान की अचिंत्य लीलाओं के बारे में, अचिंत्य शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। भगवान की शक्ति इतनी अचिंत्य है कि देखने में लगता है कि हर चीज अपने आप हो रही है, कहीं पर भी भगवान दिखते नहीं है प्रकट रूप में, हर चीज ऐसा लगता है कि अपने आप हो रही है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति ही है। और ईशोपनिषद में ये कहा गया है कि भगवान परम पूर्ण है और उनसे पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होती हैं, और ये पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होने से भगवान में कुछ भी फर्क नहीं आता, भगवान परम पूर्ण बने रहते हैं। और जो पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होती हैं वो ऐसा लगता है कि स्वतः कार्य कर रही हैं, लेकिन भागवतम से विशेष रूप से तीसरे स्कंद से हमें पता चलता है कि हर गतिविधि में, हर कार्य में भगवान का सक्रिय योगदान है। और भगवान भगवत गीता में कह भी रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में ही यह प्रकृति कार्य कर रही है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। मैं इस प्रकृति को ये निर्देशन दे रहा हूँ कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने इस अपूर्ण दूषित इंद्रियों से ये बात नहीं जान सकते कि ये किस प्रकार कार्य हो रहा है। इसीलिए आप भागवतम में देखेंगे कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आप प्लीज़ आप कृपा करके मुझे बताएं कि ये भौतिक संसार कार्य कैसे कर रहा है, भगवान की जो शक्तियाँ हैं इसको किस प्रकार से चला रही हैं। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी इसको समझ नहीं सकते। आप कृपा करके मुझे ये बताने का कृपा करें कि किस प्रकार से भगवान की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। और देवहूति हम देखते हैं कि भागवतम में देवहूति ने भी अपने पुत्र भगवान कपिल की शरण ली और उनसे बोला कि मैं तो स्त्री हूँ, मुझ में ज़्यादा समझ नहीं है, मैं अपने आप से समझ नहीं सकती, तो कृपा करके आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से ये पूरी भौतिक सृष्टि का आप संचालन कर रहे हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही वास्तविक तरीका है भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने के लिए कि किस प्रकार इतना सुंदर ढंग से भगवान ने व्यवस्थित किया है, किस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार, और भगवान कह रहे हैं कि देखो हर जगह हर तरफ मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी ही जो है निर्देशन में कार्य हो रहा है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो अगर एक मोतियों के हार को देखे तो उसको लगेगा कि आपस में मोती चिपके हुए हैं, लेकिन जो ज्ञानवान है, जो जानता है, उसको पता है कि सारे मोती एक धागे में पिरोए गए हैं। और भगवान कह रहे हैं सूत्रे मणि गणा इवा, कि मैं दिख नहीं रहा हूँ लेकिन जान लो अर्जुन कि ये पूरी भौतिक प्रकृति मेरी निर्देशन में ही कार्य कर रही है, मुझ पर ही आधारित है, मेरे पर ही निर्भर है। मेरी अगर उपस्थिति नहीं होगी, अगर मेरा सहयोग नहीं होगा, तो ये भौतिक प्रकृति का अस्तित्व टिका नहीं रह सकता, ये भौतिक प्रकृति का अस्तित्व फौरन खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जब तक आत्मा शरीर में उपस्थित रहती है तब तक शरीर बढ़ता भी रहता है और उसका अस्तित्व बरकरार रहता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड रूपी शरीर में जब तक भगवान उपस्थित रहते हैं तब तक ब्रह्मांड बढ़ता भी रहता है और उसका अस्तित्व भी बरकरार रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान इस ब्रह्मांड को समेटते हैं, अपनी उपस्थिति वहाँ से निकालते हैं, वैसे ही वो जो ब्रह्मांड है वो टिक नहीं पाता और नष्ट होकर वापस महत्तत्व में मिल जाता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से भगवान की कृपा पर निर्भर है, भगवान पर आश्रित है। ये जानते हुए कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान के निर्देशन में सब कुछ हो रहा है, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें अपनी तुच्छता का जो है अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम अगर चम भगवान को समझ नहीं सकते हैं अपनी सीमित इंद्रियों के माध्यम से, और भगवान को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहना, वही सबसे अच्छा तरीका है। और जब भगवान चाहेंगे तो भगवान हमें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि भगवान किसी को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और किसी को नहीं करते हैं? तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? और भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करने की एक शर्त रखते हैं कि आप अगर हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में अगर आप लगे होंगे तो भगवान आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी मानेंगे और दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे। इसकी सूचना भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उस भक्त को ज्ञान देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकता है। तो भगवान को जानने का, भगवान के दिव्य शक्तियों को जानने का, और वे शक्तियाँ इस भौतिक जगत में किस प्रकार कार्य कर रही हैं उसको जानने का तरीका है कि हम लोग एक गुरु की शरण लें, और गुरु की शरण लेने पर भी गर्व का अनुभव ना करते हुए विनीत भाव से गुरु से जिज्ञासा करें और उनसे ये जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार हम भगवान की जो अचिंत्य कार्य हैं, अचिंत्य लीलाएं हैं, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न। सो इनका प्रश्न है कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या अपने पर विश्वास करना ठीक नहीं है? क्या केवल भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहना चाहिए? तो जिस प्रकार हमने अभी चर्चा की थी कि भगवान उसी को ज्ञान प्रदान करते हैं जो उस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है जब हम निश्चल भाव से, निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। तो दोनों जो है महत्वपूर्ण है कारक, हमारा प्रयास भी महत्वपूर्ण है और भगवान की कृपा भी महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल अपने प्रयास पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं होंगे, और अगर हम निष्क्रिय रहते हुए केवल भगवान की कृपा की आकांक्षा करते रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके ही तुलना करते हैं कि एक व्यक्ति अगर कुएं में गिरा हुआ है तो कुएं में गिरा व्यक्ति अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता, कितना ही प्रयास करे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अगर कोई बाहर से रस्सी फेंक दे उसको तो उसका बाहर निकलना संभव है, लेकिन अगर रस्सी फेंक दी और उसने रस्सी को पकड़ के परिश्रम नहीं किया बाहर निकलने के लिए तो भी अगर रस्सी प्राप्त होने पर भी अगर उसने प्रयास नहीं किया तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो वो रस्सी है वो कृपा है भगवान की, गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, और उस रस्सी को पकड़ के बाहर निकलने का जो प्रयास है वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत प्रयास होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के संयोग से ही जो है सिद्धि प्राप्त होगी, उस कुएं से, भौतिक जगत रूपी कुएं से बाहर निकला जा सकता है। इसी प्रकार भगवान के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें अपना प्रयास करके भगवान को ये दिखाना होगा कि हम आपका कि हम आपके आपको जानने के प्रति गंभीर हैं। और जब भगवान ये देख लेंगे कि एक भक्त निष्ठापूर्वक लगा हुआ है तो भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। सो प्रयास बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब भक्त प्रयास करता है तो पूरी शक्ति से प्रयास करता है। सो ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त प्रयास करता है तो इतना प्रयास करता है कि सब कुछ उसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि भक्त सोचे कि चलो थोड़ा बहुत करता हूँ, भगवान की कृपा तो है ही, ऐसा नहीं है। जब भक्त प्रयास करता है तो ऐसे प्रयास करता है कि सब कुछ उसी को करना है, लेकिन अपने अंतःकरण में उसको पता है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो वो भगवान की कृपा पर मन में हमेशा आश्रित रहता है। लेकिन जब वो प्रयास करता है तो प्रयास में कोई भी कमी नहीं आने देता वो, ठीक है। भगवान को जानना जरूरी क्यों है और क्या सेवा से भगवान को जाना जा सकता है? भगवान को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे स्वार्थ में है, हमारे हित में है। जब तक हम भगवान को जान नहीं लेंगे तब तक हमें हमारे मन में भगवान की सेवा करने की भावना जागृत नहीं होगी, और जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की सेवा करने का अभ्यास अच्छी तरह से नहीं कर लेंगे तब तक हम इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल सकते। सो इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अर्थ है भगवान को जानना, स्वयं को जानना और भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। सो ये बहुत ही आवश्यक है। और क्या सेवा के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, सेवा के माध्यम से भगवान के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, और उस सेवा करने की 9 विधियाँ हैं जिसको नवदा भक्ति कहा जाता है। और प्रहलाद महाराज इस नवदा भक्ति का की जानकारी भागवतम में, भागवतम के 7वें स्कंद में हमें देते हैं, ठीक है। सो उस नवदा भक्ति के जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। सो ये जो नौ अंग है, नौ प्रकार की जो भक्ति है, उसमें से किसी भी प्रकार से आप भगवान की सेवा करके भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न है?